एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जो कुछ
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं फिर से भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है तेरा राजा आता है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमें जीवित रखा है। तेरे सारे आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तुझे हम धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका के लिए हम सब तेरे सामने आए हैं। हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं पिता, हमारे मन हृदयों को तू खोल दे और तेरे पवित्र आत्मा से चला। विशेषकर मेरे संग हो पिता, मुझे तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे और अगुवाई कर कि हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से तेरे वचन को तेरे लोगों को सुनाने सके। और मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, तेरे वचन को सुनने पाए और समझने पाए और तुझे अपनाने पाए पिता, तेरे प्रेम को महसूस करने सके और तुझ में उधार पाने सके, तेरे नज़दीक आने सके पिता। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है तेरा राजा आता है। बाइबल में जकरिया 9:9 में हम पढ़ते हैं, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरिया 9:9। मसीह के जन्म लेने से 500 वर्ष पहले इज़राइल के राजा के आगमन के विषय में भविष्यवक्ता जकरिया ने इस प्रकार से भविष्यवाणी किया था। इस भविष्यवाणी को अब पूरा होना था, जो अब तक किसी भी राजकीय सम्मान को ग्रहण करने से इनकार करता रहा था, जैसा कि दाऊद के सिंहासन का अधिकारी होने के लिए प्रतिज्ञा की गई थी, वह यरूशलेम को आता है। सप्ताह का पहला दिन था जब मसीह विजयी रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया था। लोगों की जो भीड़ बेथनिया में उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी थी, वह भी उसके साथ हो ली ताकि उसके स्वागत को अपनी आंखों से देख सके। बहुत से लोग फसह पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम नगर को जा रहे थे। वे लोग भी यीशु के साथ चलने वाली भीड़ में शामिल हो गए थे। सभी के चेहरों पर खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी। मार्ग के पेड़ों पर हरियाली छाई हुई थी और उनके फूलों की महक हवा में फैल रही थी। लोगों में एक नए जीवन का जोश उमड़ रहा था। हर एक के हृदय में नए राज्य स्थापित होने की आशा फिर से जाग उठी थी। यरूशलेम में प्रवेश करने के उद्देश्य को नजर में रखते हुए यीशु ने अपने दो शिष्यों को एक गधी और उसके बच्चे को लाने के लिए भेजा। अपने जन्म के समय मुक्तिदाता अनजान परदेशियों की पहुनाई पर निर्भर था। जिस गौशाले की चरनी में वह बच्चा पड़ा था, वह भी दूसरों से उधार ली हुई जगह थी। और अब यद्यपि हजारों हजार पशु उसी के हैं, फिर भी किसी दूसरे की मेहरबानी पर निर्भर है कि उसके पशु पर एक राजाधिराज के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करे। एक बार फिर उसकी ईश्वरीयता प्रकट हुई, यहाँ तक कि उसने अपने शिष्यों को ब्यौरेवार से समझाकर बताया कि पशु कहाँ मिलेगा, जैसा कि उसने शिष्यों से कहा था। प्रभु को इनका प्रयोजन है। खुशी के साथ उनकी वह विनती मान ली गई। यीशु ने अपने लिए गधे के उस बच्चे को चुना जिस पर अभी तक किसी ने सवारी नहीं किया था। चेले लोग खुशी और जोश के साथ अपने कपड़ों को उस पशु पर बिछा दिए और अपने गुरु को उस पर बिठा दिए। अभी तक सदा ही यीशु पैदल ही चलता आया था। चेलों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब पहली बार उसने किसी सवारी को चुना था, परंतु इस विचार से उनकी खुशी और बढ़ गई कि अब वह राजधानी में प्रवेश करने वाला है। अब वह अपने आप को राजा घोषित करेगा और दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। और जिस समय अपने इस विचार को वे लोग मित्रों आदि तक संदेश पहुंचाए, आसपास चारों ओर एक प्रकार की उत्तेजना फैल गई थी। लोगों की चाहत का जोश अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। यहूदियों के राजाओं के राजधानी प्रवेश की रीति को यीशु पूरा कर रहा था। जिस पशु पर वह सवारी कर रहा था वह इसराइलियों के राजाओं की सवारी होती थी और भविष्यवाणी कह रही थी कि मसीह अपने राज्य में ऐसे ही आएगा। ज्यों ही वह उस गधी के बच्चे पर बैठा हवा में विजय घोष के नारे गूंजने लगे। लोगों की भीड़ मसीह को अपने राजा के रूप में हसनाद करते हुए पलक पावड़े बिछा रही थी। इस समय यीशु उस भीड़ की श्रद्धा भक्ति सम्मान और प्रशंसा ग्रहण कर रहा था, जबकि इससे पहले उसने कभी नहीं किया था। चेले लोग इस परिस्थिति को निश्चय प्रमाण मान रहे थे कि अब उनकी अभिलाषा पूरी होने वाली है। अब उसका राज्य स्थापित होगा और वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। भीड़ के लोग भी इस बात से निश्चित हो गए थे कि वह घड़ी आ पहुंची है जब उनको आजादी मिल जाएगी। अपनी कल्पना में उन्होंने देखा कि रोमी शासन यरूशलेम से खदेड़ बाहर कर दिया गया है और इज़राइल जाति एक बार फिर स्वतंत्र हो गई है। सभी लोग खुशी के मारे जोश से भरकर एक दूसरे को आनंद करते हुए देख रहे थे। वैसे बाहरी रूप से वे लोग इस खुशी और आनंद को प्रकट नहीं कर रहे थे, परंतु मन ही मन मसीह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। वे लोग उसे बहुमूल्य उपहार देने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे, परंतु उसके मार्ग में अपने कपड़े कालीन के रूप में बिछा दे रहे थे और उन्होंने जैतून तथा खजूर की पत्तियों और डालियों को उसकी राह पर बिछा दिया था। वे लोग उस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे, यद्यपि वह राजकीय नहीं था, परंतु वे लोग खजूर की डालियों को काटकर जो प्रकृति की जीत की प्रतीक थी बिछा रहे थे और होसाना होसाना की जयघोष के साथ उन डालियों को हवा में लहरा रहे थे। जैसे जैसे वह जुलूस आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। जिन्होंने भी यीशु के आगमन को सुना वे उस जुलूस में आकर मिलते गए। तमाशा देखने वाले भी लगातार भीड़ में शामिल होते जा रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, यह कौन है? यह इतनी बड़ी भीड़ और हो हल्ला किस बात के लिए हो रहा है? उन सबों ने यीशु के विषय में सुन रखा था और उम्मीद कर रहे थे कि वह यरूशलेम जाएगा, परंतु उन्हें यह मालूम था कि सिंहासन पर बिठाने की सारी कोशिशों को उसने नामंजूर कर दिया था। और यह जानकर कि यह वही है उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वे अचंभा कर रहे थे कि जिसने यह घोषित किया था कि उसका राज्य इस संसार का नहीं है, अब कौन सी बात उसमें आ कर बदलाव ले आई है। उनके सारे प्रश्न विजय के जयघोष के नीचे दब गए थे। भीड़ द्वारा बारंबार यह दोहराया जा रहा था और उनकी ऊंची आवाजें पहाड़ों और घाटियों से प्रतिध्वनित होकर गूंज रही थी। और अब यरूशलेम के लोगों की भीड़ भी उस जुलूस में शामिल हो गई थी। असंख्य लोगों की जो भीड़ फसह पर मनाने के लिए आई थी उसमें से हजारों की संख्या में लोग यीशु का स्वागत करने के लिए पहुंच गए थे। वे सब लोग खजूर की डालियों को लहराते और ऊंची आवाज से गीत गाते हुए उसका स्वागत करने लगे। आराधनालय का याजक शाम की आराधना के लिए नरसिंगा फूंका, परंतु वहां पर बहुत थोड़े से लोग थे जो आए और अधिकारियों ने एक दूसरे को सावधान करते हुए कहना आरंभ कर दिया, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। यीशु ने इस धरती पर अपने जीवन में इससे पहले कभी भी ऐसे जलसे जुलूस के लिए अनुमति नहीं दिया था, क्योंकि वह अब उसके परिणाम को साफ तौर से देख रहा था। यह हलचल उसे क्रूस तक ले जाएगी, परंतु यह उसका उद्देश्य था कि सामान्य जनता के सामने अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करे। वह चाहता था कि लोगों के ध्यान को उस बलिदान की ओर खींचे जो पापी जगत को बचाने के लिए उसके उद्देश्य को पूरा कर रहा था। जब लोग फसह पर मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे थे, वह आदर्श मेमना स्वेच्छापूर्वक अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो गया था। उसकी कलीसिया के लिए आने वाले समय में यह अति आवश्यक होगा कि संसार के पाप के बदले में उसकी मृत्यु का गहन अध्ययन करे। इससे संबंधित प्रत्येक पहलू को संदेह से परे ले जाकर उन्हें प्रमाणित करना होगा। इसलिए यह अति आवश्यक हो गया था कि हर एक के ध्यान को उस ओर आकर्षित करे, जिससे सभी लोग स्वयं अपनी आंखों से देख सके। जिस प्रकार से वह बलिदान आवश्यक था, उसी प्रकार से उन घटनाओं को लोगों को जानना भी आवश्यक था। यरूशलेम में उसके प्रवेश करते समय इतने कोलाहल के होने से बड़ी तेजी के साथ आने वाले अंतिम दृश्य को सभी लोग देख सकते थे। इस विजयी जुलूस से संबंधित घटनाएं हर एक की जबान पर होंगी और हर एक के मन में यीशु के बातें आने लगेंगी। उसके क्रूस पर लटका दिए जाने के बाद बहुत से लोग इन घटनाओं को याद करके उसकी परीक्षा और मृत्यु से जोड़ेंगे। भविष्यवाणियों की खोज बीन करने की ओर उनके मन अग्रसर होंगे और वे इस बात को कायल हो जाएंगे कि यीशु ही मसीह था और सारे जगत में विश्वासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। उसके इस धरती के जीवन के इस विजयी दृश्य में स्वर्गीय स्वर्गदूत मुक्तिदाता के साथ रक्षक के रूप में देखे जा सकते थे और परमेश्वर के नरसिंह द्वारा घोषित कर सकते थे, परंतु इस प्रकार का प्रदर्शन मसीह के उद्देश्य के विपरीत होता, जिस नियम का पालन सच्चाई के साथ अब तक करता आ रहा था वह उसके विरोध होता। जिस दीनता को उसने अपना लिया था उस पर वह पूर्ण ईमानदारी के साथ स्थिर रहा। मानवता की चिंता को उसे तब तक वहन करना था जब तक कि वह इस जगत के लिए अपने प्राण नहीं दे देता। आज के दिन शिष्यों को ऐसा लग रहा था कि वह दिन उनके जीवन का सर्वोत्तम दिन था। यदि वे जान पाते कि जो कुछ आनंद और खुशियां मनाई जा रही हैं, वह सब उनके गुरु के उत्पीड़न और मृत्यु से पहले की भूमिका है, तो उनके मनों पर घोर उदासी छा जाती। यद्यपि मसीह ने बहुत बार अपने बलिदान की निश्चयता के विषय में उन्हें बता चुका था, फिर भी उस आनंद के जोश में उसकी दुख भरी बातों को भुला बैठे और उसके दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की घड़ी का इंतजार करने लगे थे। उस जुलूस में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और कुछ लोगों को छोड़कर जितने भी शामिल हुए थे उस घड़ी इतने प्रभावित हुए कि सबके मुंह से होसाना होसाना की आवाजें चारों ओर प्रतिध्वनित होने लगी थी और पहाड़ों तथा घाटियों से होती हुई गूंज रही थी। आवाज लगातार ऊंची से ऊंची होती जा रही थी, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसाना। इससे पहले कभी भी संसार ने ऐसे विजयी जुलूस को नहीं देखा था। इस धरती के प्रसिद्ध विजयी राजाओं आदि के समान यह जुलूस नहीं था। इस जुलूस में विजयी राजाओं के विजय चिन्ह के रूप में बंधुए सैनिकों का झुंड नहीं था, परंतु जहां तक उद्धारकर्ता के विजय चिन्ह का प्रश्न था, पापी मनुष्यों के लिए उसका प्रेम भरा परिश्रम ही उसका विजय चिन्ह था। वहां पर गुलाम अवश्य थे, परंतु उन्हें शैतान के बंधन से यीशु ने आजाद करा लिया था और अब वे सब अपनी आजादी के लिए मसीह की प्रशंसा और स्तुति कर रहे थे। जिस अंधे को आंखें दी गई थी वह उस जुलूस को रास्ता दिखा रहा था। वह गूंगा जिसकी जबान को मसीह ने खोल दिया था ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर होसाना होसाना के गीत गा रहा था। जिस लकवा के मारे को मसीह ने चंगा किया था वह आगे आगे बढ़कर खजूर की डालियां तोड़ तोड़ कर मुक्तिदाता के आगे आगे लहराता हुआ चल रहा था। विधवाएं और अनाथ लोग उच्च स्वरों से यीशु द्वारा किए गए दया के कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। वे कोढ़ी जिन्हें मसीह ने पाक साफ किया था, वे अपने बेदाग वस्त्रों को उद्धारकर्ता के मार्ग में बिछा दे रहे थे और प्रशंसा करते हुए महिमा के राजा का नारा गुंजा रहे थे। जिन्हें मृत्यु की नींद से उसकी आवाज ने जगाया था, वे भी उस भीड़ में शामिल थे। लाजर, जिसके शरीर ने कब्र को देख लिया था और अब स्वस्थ और मजबूत बदन वाला था, उस पशु को पकड़कर चल रहा था जिस पर मुक्तिदाता सवार था। बहुत से फरीसियों ने इस दृश्य को देखा और डाह तथा द्वेषता की आग में जलते हुए इस प्रशंसामय प्रभाव को पलट देना चाहा। अपने संपूर्ण अधिकार का उपयोग करते हुए लोगों को चुप करा देना चाहे, परंतु उनकी धमकी और मनाही करने की विनती ने लोगों के जोश को और बढ़ा दिया था। फरीसियों को भय हो गया था कि यह असंख्य लोगों की भीड़ यीशु को राजा घोषित कर देगी। अपनी अंतिम कोशिश को सफल बनाने के लिए वे उस भीड़ को चीरते हुए यीशु तक पहुंच गए और धमकी देते हुए उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उन्होंने घोषित कर दिया कि इस प्रकार का जुलूस निकालना कानून के अनुसार ठीक नहीं है, इसलिए अधिकारी लोग इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। परंतु यीशु के उत्तर ने उन्हें चुप करा दिया। मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह विजयी दृश्य स्वयं परमेश्वर द्वारा ठहराया हुआ था। भविष्यवक्ताओं ने इस भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दिया था और मनुष्य में वह सामर्थ कहां कि उसके उद्देश्य में बाधा डाल सके। यदि मनुष्य उसकी योजना को पूर्ण नहीं करता तो वह उन निर्जीव पत्थरों को बोलने की सामर्थ दे देता और वे पत्थर उसके पुत्र की महिमा और स्तुति करने लगते। जब फरीसी लोग चुप होकर वापस चले गए तो सैकड़ों की संख्या में लोग ऊंची आवाजों में जकरिया नबी द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराना आरंभ कर दिया। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर परन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यरूशलेम के शासकगण उसे स्वीकार नहीं किए, वे उसे डाह किए, वे उस भीड़ को रोकने का काम किए जिससे उन पर विपत्ति आई, उन पर चढ़ाई हुआ, दुश्मनों ने उन पर आक्रमण किया, यरूशलेम का विनाश हुआ। यदि वे उस मुक्तिदाता को ग्रहण करते जो नगर में प्रवेश करने जा रहा था, यदि वे उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए होते तो वे बच सकते थे, बाहरी दुश्मनों के आक्रमण से बच सकते थे। यह वही राजा था जो यहूदियों को बचाने के लिए आया। वह केवल यहूदियों को नहीं बल्कि सारे संसार के लोगों को पाप से बचाने के लिए आया। यदि हम उसको अपना उद्धारकर्ता और राजा मानकर ग्रहण करेंगे तो वह हमें भी बचा लेगा। आइए हम उसे अपना राजा अपना ले। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा महिमा करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए जो हमें सुनने का मौका दिया। इस वचन में तो आशीष दे, इस वचन के द्वारा तू हमें आशीषित कर और तेरे नजदीक ला। हम तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं पिता, तू ही हमारा राजा है। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, उनको भी तू बहुताय से आशीष दे, उन्हें तू मदद कर कि वे तुझे पहचाने और तुझे अपना राजा अपनाए, वे तुझे अपने अपना राजा मानकर ग्रहण करे और हम सबों को तू बचा पिता, हम सबों को तेरे राज में ले चल और तेरे रास्ता में चला, हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर पिता और तेरे राज में बचा ले। हम सब तेरी उपासना करते हैं, हम तेरा महिमा करना चाहते हैं पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर दे, आमीन।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी,
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।